हेलो।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
क्या बात है करामती साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
हाँ बस जरा दिल में तकलीफ हो गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ।
डॉक्टर के पास गए थे?
नहीं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं।
लेकिन आपको पहले भी अटैक हो चुका है, अब आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
कुछ नहीं हुआ, बस जब अचानक ये पता चला कि मसूद ने मेरी अदम मौजूदगी में कंपनी को बेच डाला और सब कुछ अपने नाम करवा लिया, तो एकदम दिल में दर्द सा उठ गया था।
लेकिन अब काफी बेहतर हो, आप सुनाइए।
तो मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि आपको इतला दे सकूं, क्योंकि जावेद साहब का चेक कैश करा लिया गया है और मिसेस पैमान ने भी इंजीनियर साहब को नक्शे दे दिए हैं।
ओह चलें, खुदा का शुक्र है। इंजीनियर पैमान की हालत अब कैसी है?
उनकी हालत तो वैसी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कल रात को मैंने एक भयानक ख्वाब देखा, अफसोस के वो अब तक अजाब में मुब्तला है। गालिबन अभी तक उनकी गर्दन पर लोगों के मजीद हकूक बाकी हैं।
हाँ शायद बुर्जे सदफ के जलजला प्रूफ ना होने की वजह से है।
कल को इस इमारत या इसके मकीनों को अगर कोई हादसा पेश आ जाता है
तो इसका गुनाह पैमान साहब की गर्दन पर होगा, हमारे बस में भी कुछ नहीं। यही वजह है कि वो अजाब झेल रहे हैं।
बहरहाल अब हमारा साथ मिलकर काम करने का जवाब नहीं रहा। मैंने इसलिए फोन किया है कि
इस दौरान जो भी जहमतें और मुश्किलात आपको उठानी पड़ी
उनके लिए आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, और आपसे खुदा हाफिजी भी कर लूं।
खुदा हाफिजी? क्यों, क्या आप कहीं जा रही हैं?
इस वक्त तो मुझे खुद भी मालूम नहीं, शायद अपनी मामा के साथ अमेरिका जाना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि शायद फिर वक्त मिले ना मिले आपसे खुदा हाफिजी कहने का।
तो मैं जरा रुकिए,
आपने तो मुझे परेशान कर दिया। सुने, एक घंटे बाद अफ्तार है, क्या मैं आपको दावत दे सकता हूँ अफ्तार साथ करने की? वो दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था, मैं चाहता हूँ कि आपके जाने से पहले आपसे कह दूँ।
जी ठीक है।
Thank you. अच्छा तो ये बताओ, इन चंद सालों में तुमने क्या किया, कहाँ चली गई, हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? हमने तुम्हें बहुत मिस किया।
तलाक के बाद तो चंद महीने में अपने माँ बाप के पास ही रही, फिर अम्मू सौलिया की मदद से एक घर किराए पर ले लिया और जॉब कर ली। लेकिन पिछले साल एक के बाद एक पहले बाबा और मामा की मौत से मेरी जॉब करने का हौसला खत्म ही हो गया।
बहुत अफसोस हुआ उसका, खुदा उनकी मगफिरत करे। कितनी गलत बात है कि हम एक दूसरे से इतने बेखबर हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं मर जाती और वो दिन न देखने पड़ते। माजी में जाया जा सकता और तमाम बुरे वाकयात को पेश आने से रोका जा सकता। लेकिन बहरहाल अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब हम नए सिरे से आगाज कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने शादी नहीं की।
आप गलत सोच रही हैं, मैं यहाँ वापस लौटने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो बस इसलिए आई थी कि ताकि जिस फसले ने 2 साल तक एक डरावनी ख्वाब की तरह मेरी नींदें छीन ली और साय की तरह अब तक मेरे ताकुब में है, वो जान सकूं मैं क्यों मुझे तलाक दी, क्यों सरोज ने अचानक सब कुछ खत्म कर दिया।
बैरून मुल्क जाने का आपका ये फैसला हतमी है?
सच तो ये है कि मेरा खुद भी दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन जब बहुत सोचती हूँ तो इस नतीजे पर पहुँचती हूँ। मैं जो काम भी करती हूँ उसकी वजह से मेरे बाबा और सौतेली माँ की जिंदगी मुतासर होती है। जो भी रवैया अख्तियार करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उनकी दिल आजारी का बायस बनता है। मैं खुद भी थक चुकी हूँ, इसलिए शायद मैं मामा के साथ चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि अब अपने बाबा को मौका दूँ ताकि कुछ अरसा वो सुकून से जिंदगी गुजार सकें।
लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप ना जाएं।
लेकिन क्यों?
वो दरअसल मैं एक अरसे से बहुत तना हो गया हूं। हमेशा एक खला का एहसास रहता है। कैसे कहूं, जब से मैं आपसे मिला हूं आपको भी जानने का मौका मिला है और खुद को महसूस करने का भी। हमारे इस मुश्तरका तजुर्बे ने हमारी जिंदगी को एक दूसरे से मरबूत कर दिया है। अलबत्ता मैंने अब तक इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जब आपने बताया कि आप ईरान से जाना चाहती हैं तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आपको जाने से रोक लेना चाहिए।
मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं?
कैसे कहूं मैं, असल में मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूं।
आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया है, मुझे इस बात की बिल्कुल तवक्का ना थी, अब पता नहीं मैं क्या कहूं।
हेलो हेलो मामा, मैं 2 मिनट में आपको फोन करता हूं। खुदा हाफिज़। मैं आपकी मुश्किलात और ज़हनी हालत को समझता हूँ, लेकिन यकीन जानिए मेरी अपनी हालत भी इससे कुछ कम नहीं है। और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि मैं शादीशुदा और एक बेटे का बाप हूँ। आप मुझे खुद मुझसे कहीं बेहतर जानती हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको बखूबी जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ये वाबस्तगी एक सतही और गैर आफाकी वाबस्तगी हो।
बस करें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मजीद कुछ मत कहिएगा।
मैंने आपको नाराज कर दिया?
हाँ, मैं आपके प्रपोजल पर सोचूंगी जरूर।
मुझे जवाब कब देंगी?
ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त ही नहीं है। अफ्तार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
पहले गौर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, फिर काटना, या तो तुम्हारा मोबाइल ऑफ होता है।
मगर उस वक्त मैं बात नहीं कर सकता था।
कहीं भी हो उठो और फौरन घर पहुँचो, तुम नहीं चाहोगे कि 2 साल बाद अपने बेटे से मिलो?
नीमा और परवाना?
हाँ, नीमा और परवाना जान 2-3 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जी, आप कौन?
अस्सलाम वालेकुम, मैं बहनोश की माँ हूँ। शफी घर पर है?
वो तो बाहर गए हुए, अभी लौटे नहीं है। अंदर तशरीफ ले आइए।
जी नहीं शुक्रिया, मैं यही इंतजार कर लेती हूँ। क्या शफी घर देर से लौटेंगे?
नहीं, बस आते ही होंगे। इस तरह दरवाजे पर खड़े रहना मुनासिब नहीं, अंदर आ जाइए।
अंदर तशरीफ ले आए।
तुम नीमा हो?
हाँ।
मैं हूँ तुम्हारा बाबा। तुम अपने बाबा को नहीं पहचानते?
आप मेरे बाबा नहीं हैं, मेरे बाबा मर गए हैं।
ये किसने कहा?
मामा, 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 मामा।
मेरे पास आओ, बाबा की जान। किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? मैं तुम्हारा बाबा हूँ मेरी जान। रो मत, रो मत। अस्सलाम वालेकुम परवाना।
वालेकुम अस्सलाम।
लीजिए।
नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे ख्वाहिश नहीं। आप प्लीज बैठ जाइए। बहनोश मेरी जान, चंद लम्हों के लिए हमें अकेला छोड़ दो। दरअसल बहनोश के मुतालिक शफी से कोई भी बात करना बिल्कुल ही फजूल है। वो एक जिद्दी और हठधर्म शख्स है, हमेशा अपनी ही चलाता है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर उससे कोई अपनी बात मनवा सकता है तो वो आप हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहनोश के बैरोने मुल्क जाने की इजाज़त आप उससे दिलवाएं। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो बहनोश को ज़बरदस्ती या गैर कानूनी तौर पर भी अपने साथ ले जा सकती हूँ, लिहाजा ये जान लें कि ये आपके हक में भी बेहतर होगा कि बहनोश मेरे साथ ही चली जाए। मेरा ख्याल है कि कोई भी सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे की मौजूदगी को कभी भी पसंद नहीं करेगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपका क्या ख्याल है? मैं यकीन कर लूँगी। बहरहाल याद रहे कि अगर बहनोश मेरे साथ चली जाती है तो शफी की तमाम दौलत की आप अकेली वारिस होंगी। मैं बहनोश से कह दूंगी कि वो आपको लिख कर दे दे कि उसे शफी की दौलत की जरूरत नहीं। मैंने उसके लिए इतना जमा कर रखा है कि उसकी आने वाली नस्लें तक खाएंगी।
मुझे शफी की दौलत से कोई गर्ज नहीं। बहनोश बिल्कुल एक दोस्त की तरह है। मैं उसे अपनी छोटी बहनों की तरह चाहती हूँ।
बहरहाल ये बेहतर होगा कि आप शफी से कह दें कि वो अपनी जिद और हठधर्मी से बाज आ जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अब मजीद उसके साथ रहे।
मम्मा बाबा आ गए।
बेहतर है कि आप तशरीफ रखें। अब जबकि वो खुद आ गए हैं तो आप खुद ही उनसे बात कर लें।
मुझ में जिद्दी और हठधर्म लोगों से बात करने का बिल्कुल भी हौसला नहीं और ना ही वक्त है। बेहतर है कि आप उससे खुद ही बात कर लें और उसे राजी भी कर लें। अच्छा मेरी बेटी, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
नीमा, चलो हम सहन में चलते हैं। वहाँ तुम्हें मैं एक अच्छी सी रेड कलर की फिश दिखाती हूँ।
चलें दादी, चलें दादी। मछली का बच्चा पानी में पिछला, अब्बू ने पकड़ा, अम्मी ने पकड़ा।
चलो चलें, हम जा रहे हैं।
मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने आई हूँ, कहो।
मैं समझा था कि
हाँ कहो, मुझे क्या पता था तुम क्या समझते थे।
मैं समझा था कि तुमने शादी कर ली है।
कोई बात नहीं, इससे पहले भी तुमने बहुत कुछ समझा है, जिनकी वजह से तुमने सब खत्म कर दिया। वो बातें, वो सोचे क्या थी जिसने हमारी जिंदगी को मुतासिर कर दिया।
मुझे कुछ नहीं कहना है।
तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे, अपनी बात कहने की जरूरत नहीं थी तुम में। जब तुम्हें बोलना चाहिए तब तुम चुप रहते हो, और जब खामोश रहना चाहिए तो ऐसा संगीन कदम उठा लेते हो कि बाद में खुद ही पछताते हो। क्या मुझे खिलौना समझ रखा है? जब मुझ पे बेवफाई का इल्जाम लगाया तब मुझे वजह नहीं बताई। जब मुझे तलाक दी फिर भी कुछ नहीं कहा तुमने। फिर रोजाना अखबार में मेरी तस्वीर छपवाते रहे ताकि मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं, तब भी तुमने इस बारे में नहीं सोचा। 2 साल से मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, हमेशा यही सोचती रही जिस शख्स के साथ मैंने इतने साल गुजार दिए वो किस तरह मुझे ऐसे छोड़ सकता है। ये सोचे मुझे चैन नहीं लेने दे रही है। इन्होंने मुझे अंदर से परेशान कर दिया है। अब तुम बोलने से फरार अख्तियार नहीं कर सकते।
अच्छा ठीक है, बताता हूँ, तुम गुस्सा मत हो, कोशिश करता हूँ।
तुम्हें हक नहीं पहुँचता उसे मेरे घर में आने देती। जो मेरे घर से चला गया उसे हक नहीं दोबारा लौटने का, समझी? उसे दोबारा लौटने का हक नहीं।
तो मैं क्या करती? उन्हें दरवाजे पर ही खड़ा रहने देती? इस तरह नहीं होता, इंसानियत भी कोई चीज है।
अगर मैं पहले आ जाता तो उसे बताता कि इंसानियत क्या होती है। इस तरह अपने घर से निकाल बाहर करता कि फिर कभी इधर करो नहीं करती। मैं एक बार जुदाई का जख्म सह चुका हूँ, मगर अब की बार ऐसा नहीं करने दूंगा, न उसे न बहनोश को।
बहनोश को आप तमाम उम्र अपने पास तो नहीं रख सकते ना। अगर आप चाहते हैं कि बहनोश को हमेशा के लिए अपने पास रखें, तो उसे थोड़ी आजादी दें, उसे इंतखाब करने का हक दें, उसे चंद दिन अपनी माँ के साथ रहने दें। अगर बहनाज का इखलाक वैसा ही है जैसा कि आपने बताया, तो इत्मीनान रखें कि वो लौटकर आपके पास ही आएगी।
नहीं,
ये आप भी जानते हैं मैं ठीक कह रही हूँ। अगर बहनोश को उसकी माँ से दूर रखा तो वो आपको नहीं समझेगी, वो अपनी माँ से वाकिफ नहीं है, वो आपको समझ नहीं पा रही।
वो औरत चाहती है कि बस हर एक पर अपना हुक्म चलाती रहे, बहनोश के साथ भी वो क्यों ही करेगी।
ये आप जानते हैं वो नहीं, जिसने इन 20 सालों में चंद बार से ज्यादा अपनी माँ को नहीं देखा। बहनोश उनके साथ नहीं रही है, जब वो उनके साथ थी तो इतनी छोटी थी कि इन सब बातों को नहीं समझती थी। उसने अपनी माँ के बारे में इतना सोचा कि अपने जहन में उन्हें फरिश्ता तसव्वुर कर लिया है। लिहाजा आपको चाहिए कि उसे मौका दें, उसका जहन बदल सके, उसे अपनी माँ को खुद समझने दें, उसे खुद फैसला करने दें। आपको उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आप समझ रहे हैं ना।
दो साल पहले जब मैंने मसूद के साथ नई नई कंपनी का आगाज किया था, याद है ना तुम्हें? यकीनन तुम्हें याद होगा कि जब मुझे 3-4 रोज या शायद पूरे हफ्ते के लिए मजबूरन बंदर अब्बास माल की क्लियरेंस के लिए जाना पड़ गया था, मैं 2 रोज वहां रुका और जब तेहरान वापस लौटा तो तय तो यह था कि वहां 1 हफ्ता रुकूंगा, लेकिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। जब मैं लौटा तो पता चला कि
लौटे तो तुम्हें क्या पता चला? हाँ,
पता चला कि
तो आप बताते क्यों नहीं, तुम्हें क्या पता चला था?
तुम इनकार नहीं कर सकती या कर सकती हो, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुम इनकार नहीं कर सकती।
आखिर तुमने क्या देखा था, बताओ। उसके बाद क्या हुआ, बताओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
कहाँ थी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी?
क्या हुआ, नाराज क्यों हो आप?
मैंने पूछा तुम कहाँ थी।
मैं आपकी अम्मी के घर गई थी।
मेरी माँ? चलो अभी अपना सामान उठाओ, फौरन मेरे घर से निकल जाओ।
क्या?
मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से।
लेकिन क्यों?
जाओ, दफा हो जाओ, अब मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, ना तुम्हारी ना इस बच्चे की।
आखिर बता भी तो चले, हुआ क्या है?
कोई सवाल मत करो, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं। सुना नहीं मैंने कहा दफा हो जाओ?
ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे घर से निकालने की वजह तो मालूम होनी ही चाहिए, वरना मैं अपने माँ बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी, क्या बताऊंगी, क्या मेरा कसूर क्या है? बस इसलिए कि तुमने मुझे रेस्टोरेंट में देखा था, वो भी ये जाने बिना कि असल मामला था क्या, मुझे और अपने बच्चे को आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया, कैसा यकीन था तुम्हारा?
नहीं, मुझे यकीन हो गया था क्योंकि तुम्हें रेस्टोरेंट में देखने के बाद जब मैं बाहर वापस आया तो मसूद गाड़ी के पास खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओ मेरे खुदा, तुम्हें यकीन है? तुमने जो कुछ अभी मुझे बताया वो सब सच है?
तुम्हें मुझ पर एतमाद है या नहीं?
जाहिर है वो तो है, ये कैसी बातें कर रहे हो?
कितना एतमाद करते हो मुझ पर बोलो। हाँ, अगर मुझ पर एतमाद नहीं है तो आइंदा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बस औकात इंसान को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता।
हाँ वाकई, जैसे अभी जो कुछ आंखों से देखकर आ रहा हूँ उस पर यकीन नहीं आ रहा।
अब तो देख लिया ना।
तुम्हारी बात और है यार, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो।
अगरचे तुम्हें यकीन नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें ये सब कुछ करते हुए देखा है।
मसूद, उसने ये सब कुछ कहा?
हाँ, उसने ही कहा है।
उसे अभी फोन करो और कहो फौरन यहाँ आए।
किस लिए?
ताकि मैं उसकी गलती का उसे एहसास दिला सकूं और एक तमाचा रसीद करूं।
लेकिन
लेकिन क्या, कहीं अभी तुम्हें उस पर भरोसा तो नहीं? वो जो उसने मेरी शादी के मुतालिक कहा, या फिर वो झूठ जो उसने नीमा को छीन लेने के मुतालिक तुम्हारे बारे में कहा?
ये बात नहीं है, अगर वो अभी मुझे मिल जाए तो मुझे खुद भी उससे जरा काम है।
तो फिर कहाँ है तुम्हारा वो पार्टनर, वो जिगरी दोस्त? हाँ,
भाग गया, मेरा सब कुछ अपने नाम पर करवा कर भाग गया।
अच्छा तो बिलाकर उसने अपनी असलियत तुम्हें दिखा ही दी। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया कि तुम किसकी बातों पर यकीन किया करते थे। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था, हत्ता की शादी के वक्त भी बताया था कि मेरे और भी कई रिश्ते आए थे। तुमसे शादी करने के बाद उनमें से एक लड़का जो हमारे जानने वालों में से था और हम बचपन में एक साथ पले बड़े थे और वो हमारा पड़ोसी भी था, वो एक दिन मेरे पास आया। वो नशा करने लगा था, बुरी सोबत में पड़ गया था। मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं जानती थी तुम क्या रिएक्ट करोगे, या खुद को कोई नुकसान पहुंचा लोगे या फिर उस बदबख्त को। जब तुम मंदराबाज गए हुए थे तो मैंने मसूद को बताया कि वो लड़का मुझे तंग कर रहा है, पैसे मांग रहा है। मसूद ने कहा आप उससे कहीं मिलने का तय कर ले, मैं खुद उससे निमट लूंगा।
अच्छा, फिर क्या हुआ?
फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में उसे मिलने को कहा लेकिन मसूद नहीं आया, और मैंने उसे पैसे दे दिए और कहा मेरे शौहर को पता चला तो जिंदा नहीं बचोगे। उसने वादा किया है कि अब वो कभी मुझे तंग नहीं करेगा। लेकिन मसूद साहब तशरीफ नहीं लाए बल्कि अपने मजमूम मजाइम के साथ आपको वहां लेकर आ गए।
समझ गया, काफी है, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया मसूद, तो के पास। खैर, अब सब कुछ ठीक हो जाए।
नहीं, कुछ चीजें हैं जो इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं होती, और वो भी वो दिले सोखता कि जो 2 साल तक एक बेजा तोहमत की वजह से जलकर खाक होता रहा। मेरे पास तो अब कोई दिल भी नहीं बचा। मैं तुम्हारे साथ के जिसने मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया और मुझे अपनी सफाई तक पेश करने नहीं दी, जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जा रही हूँ माँ जी। नीमा चलो, दादी जान को खुदा हाफिज कहो।
परवाना क्या हुआ? परवाना रुको, आखिर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? परवाना मेरी जान, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। क्या हुआ सरोश? परवाना क्यों चली गई? सरोश, क्या कह दिया था? जवाब दो मुझे।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मसूद।
रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो?